और तुम कुंती का लड़का है, तुम उनके तरफ में मिल जाओ और तुमको ये चक्रवर्ती राजा बना देंगे और पांचों भाई तुम्हारी सेवा करेंगे, क्योंकि वो सब तुमसे छोटे हैं, तुम उनके तरफ आ जाओ। तुम क्यों? दुर्योधन एक असत व्यक्ति है, उसके तरफ से लड़ रहे। सब कुछ उन्होंने कहा तो उसने कहा कि आप जो कहते हैं सब सत्य है, मैं मानता हूं, किंतु फिर भी आपकी बात मुझसे नहीं मानी जा सकती, माना ही नहीं। कहता है सब कुछ ठीक आप करें, तो अभी मेरी रुचि नहीं हो रही है उसके सुनने। इसलिए महासत्यवादी था, दानी भी था, ऐसा दानी जो मर रहा है और गदा से अपना प्राण रक्षा कर रहा है, रात हो गई है और एक ब्राह्मण खोजते 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 वहां पर उपस्थित हुआ, बोला जैसे हमारी लड़की की शादी है, हमको कुछ मरते समय तो दान दे जाओ। ताजे हमारे पास समय देने लायक तो कुछ है नहीं, तो आपके सोने के दांत हैं और उसमें मणियां सब जड़ी हुई हैं, वो दांत हमको दे दी। अच्छा, सो याद आ गई, बस गदा लेकर के तोड़ दिया, मुख एकदम रक्तों से भर गया और फिर उसको व्यर्थ होकर वो ब्राह्मण लेकर के चला गया। वो ब्राह्मण भी कैसा होगा बतलाओ तो, वो ऐसा नहीं, किंतु कर्ण कितना दानी था, किंतु ये दान पुण्य कुछ काम नहीं आया। पृथ्वी ने उसका रथ के चक्के को निकल लिया और छोड़ा ही नहीं, पृथ्वी उठ गई। उसने जब जोश उठाया तो पृथ्वी समेत वो चक्र ऊपर उठाया, किंतु पृथ्वी ने उसका वो चक्र नहीं छोड़ा। ब्राह्मण का एक अभिसंपात उसको लगा, वो तो दिखला नहीं। तो कृष्ण स्वयं उसे समझा रहे हैं, सब कुछ समझाया, किंतु उनकी बात नहीं, भगवान की बात नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि उनमें कहां गुण हो सकता है। और वसुदेव जी को एक बार कहा कि हमको वहां दे आना गोकुल में दे आना। उन्होंने ये नहीं कहा जैसे हमने तो प्रतिज्ञा की है कि हमारे लड़कों को सब तुमको दे दूंगा तो ये पाप होगा, विचार नहीं। यही सत्यवादी है, इसलिए वो कर्ण और दुशासन, दुर्योधन, जरासंध और वो शकुनी, वो जितना भी सच बोले सब झूठे हैं। भगवत भक्त यदि उसके मुख से कोई भी बात भी निकल गई तो कृष्ण उसको सत्याभिधातम भक्त भाषित करेंगे। भक्तों की बात को सत्य करने के लिए कृष्ण को फिर से कुछ करना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा भगवान ने अपनी मर्यादा तोड़ दी कि उन्होंने भीष्म पितामह ने उनकी मर्यादा को तोड़वा दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि हरि से अस्त्र गहाऊं और यदि न गहाऊं तो मैं शांतनु का पुत्र नहीं, मैं जरूर हरि से। उन्होंने कहा कि मैं अस्त्र महाभारत युद्ध में नहीं ग्रहण करूंगा। कृष्ण ने प्रतिज्ञा की मैं महाभारत में मैं लड़ूंगा नहीं, अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करूंगा। इसलिए दुर्योधन ने उनको नहीं लिया, सारी सेना ली,
नारायणी सेना ले ली।
और अर्जुन ने कहा कि हमको आपको लड़ने की जरूरत है, अस्त्र धारण की जरूरत, आप ऐसे ही हमारे साथ, उनको वो ले लिया। अब वो प्रतिज्ञा की है और भीष्म ने ऐसा युद्ध किया, अर्जुन संभाल नहीं सके, सारी सेनाएं नष्ट हो रही हैं। और उस समय में भीष्म पितामह जी ने ऐसा युद्ध किया जो कृष्ण एकदम रथ से कूद पड़े भीष्म को मारने के लिए, हाथ में एक रथ का चक्का पड़ा था उसको लेकर के मारने के लिए। भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट गई और उन्होंने भगवान ने अपनी मर्यादा को तोड़ दी। कहीं नहीं तोड़ी नहीं, मर्यादा की रक्षा की कृष्ण, क्योंकि पहले से कह रखा है मैं भक्तों की बात को मानता हूं, अपनी बात पर अधिक जोर दी। मैं भक्तों की बात पहले मान करके और अपनी बात को भी दूर कर देता हूं, इसलिए यही तो मर्यादा भगवान के, यही तो मर्यादा रखने के लिए भीष्म पिता की बात मान ली और अपनी तोड़ ली, यही भगवान की यथार्थ में मर्यादा है। तो हरा भक्त से कुतो महत गुणा, जो भगवान के अभक्त हैं उनमें कभी गुण कोई हो ही नहीं सकता है, महान गुण कभी संभव नहीं। हिरण्यकश्यपु में किस चीज की कमी थी, प्रहलाद महाराज में कौन ऐसी विशेष बात थी। हिरण्यकश्यपु में संसार का सब कुछ जो कुछ था वो गुण दृढ़ प्रतिज्ञता सब कुछ उनमें थी, केवल भक्ति नहीं थी। आप प्रहलाद महाराज में और कोई बल नहीं था और कुछ भी नहीं था, केवल भगवान की भक्ति थी। उसी एक भक्ति के बल पर वो अपने आप मारा जाए, इनको कुछ मारना भी नहीं पड़ा। इसलिए भक्तों में कहां कोई गुण है, कोई गुण नहीं संभव है। मनोरथ है ना असत्य, सब समय असत मनोरथ करते हैं। असत मनोरथ माने क्या, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये
शिशुपाल,
दंतवक्त, हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, वो चाहते क्या थे, क्या चाहते थे, संसारिक कामना वासना और संसारिक राज्य और प्रतिष्ठा, यही चाहते थे। इसलिए ये सब असत मनोरथ हैं। मुक्ति भी मान लिया जाए तो भी असत है। मुक्ति कैसी है, मुक्ति है नहीं, आकाश में जैसे फूल होते हैं ना, आकाश कुसुम जैसी, निरर्थक और है ही नहीं है, और यदि कुछ है भी तो वो नरक है, उसमें फिर निकल करके आना मुश्किल है। इसलिए कहते हैं मनोरथीन असति, असत मनोरथ उनके होते हैं जिनको भक्ति नहीं होती। आज जिनको भक्ति होती है उनमें समस्त देवता लोग भी निवास करते हैं, और सब जितने सद्गुण होते हैं समस्त सद्गुणों की खान वो होते हैं। इसी तरह से भक्ति इस देहात्माभिमान है जो अभक्त में होता है। हम लोगों में अभी देहात्माभिमान है, अभिमान देहात्माभिमान ही समस्त दुर्गुणों की खान है, मूल है, इसी से ये बीज है, और इसी से सारे जितने भी दोष हैं वो सब होते हैं। देह का अभिमान दूर हो गया, अपने आप काम क्रोध लोभ मद मोह मा सब जो सब दूर हो जाएगा, चित्त निर्मल शांत हो जाएगा। और ये देहात्माभिमान में देह ही आत्मा है, मैं हूं, बस यही होने से इसके लिए जितने प्रकार के अनर्थ होते हैं, इसलिए इसको यदि छोड़ना है तो हरि कथा उस तलवार के समान है जो इन आसक्तियों को छेदन कर देती है। और वो भी यदि महापुरुषों के द्वारा हरि कथा हो तो और वो उपकारी होती है। तम प्रत्यगात्मनि सदा भगवन भगवत अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्त भक्तिं विधाय परमां शनै कैर विद्या ग्रंथि विभेत्सि ममाह इतिमि प्ररूढम्। मनु महाराज जी ध्रुव को कह रहे हैं, ध्रुव उत्तम के मारे जाने पर कुछ क्षुब्ध हो गए और वो अपना सैन्य सब लेकर और उत्तरांचल में चढ़ाई कर दी, और जक्ष कुबेर के जो जक्ष जो उनके भाइयों भाई को मारा था उन पर आक्रमण करके सबको मार दिया। उस समय में मनु महाराज जी उन देवताओं के कहने से आकर के इनको समझाने लगे, तो वही समझा करके कह रहे हैं, ध्रुव तुम भीत सर्वशक्ति, तुमने भगवान अनंत को अपनी आत्मा के अंदर में रखा है, अपने हृदय में रखा है, आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्त प्रत्येक आनंद स्वरूप, तुम कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और उस आनंद को तुमने कृष्ण में रखा, क्योंकि उनकी उपासना के द्वारा सब समय अपने हृदय में उनको आबद्ध रखा है। इसलिए तुम्हारा अहम और मम अभी तक गया क्यों नहीं, ये तो असंभव है। जिस जो भगवान की आराधना करता है साधन अवस्था में ही, उसका यह अहम, ये शरीर मैं हूं और ये शरीर संबंधी वस्तु मेरी है, ये अहम और मम दोनों छूट जाते हैं। किंतु ऐसा नहीं, कि अहम ही उसका दूर हो जाएगा और मम भी दूर हो जाएगा। उसका अहम क्या है, मैं भगवान का दास आत्मा हूं, ये रहेगा। और ये समस्त विश्व भगवान का है, ये भगवान की सेवा के उपकरण चीजें हैं, इनके द्वारा हम भगवान की सेवा करेंगे, ये नहीं दूर होगा। ऐसा नहीं कि मम और अहम और मम, मैं और मेरा दोनों छूट गया, ऐसा नहीं, ये गलत अर्थ हो जाएगा। जब तक वो चेतन स्वरूप है, भगवान कृष्ण का ही नहीं अहम मम छूट सकता है, न छूटा। वो कहते हैं जे जथा माम जथा प्राप्त प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम्
प्रवर्तते अहम् सर्वस्य प्रभवो।
इसलिए माम माम अहम अहम ये कह रहे हैं। तो इसलिए चित्त जीव, हम लोग जो जीव हैं, जीव का भी एक अहम है, शुद्ध अहम मम दोनों। मैं भगवान का नित्य दास हूं, मैं छोटा सा चिन्मय ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो सुख की राशि है, अभी भूल करके माया में फंस गया है। ज्यों ज्यों वो सुलझाने की चेष्टा करता है, उलझता हुआ और उसमें पड़ा हुआ है। ये उलझी गुलथी कब समझे सुलझेगी, यदि कोई भगवान का भजन करेगा, भगवान की कथाओं का श्रवण करेगा। जो कुछ होता है ये सब का मूल कारण है देहात्म बुद्धि। देहात्म बुद्धि माने क्या होता है बोलो तो? देहात्म बुद्धि माने क्या? आत्मा ये मैं हूँ ये समझ लिया बस। वो किसी तरह से काम क्रोध लो मत मोह झगड़ाई लड़ाई झगड़ा ये बात विवाद ये नहीं रोक सकता। इसलिए देह में आत्मबुद्धि होने से ही ये सब अनर्थ हो जाए। और इसी तरह से संसार में वो फिर से जन्म और मृत्यु के साथ। इसलिए देहात्म बुद्धि यदि कम जाए तो कहीं भी कोई अब रुकावट नहीं है। इसलिए देह में आत्मबुद्धि सब लोगों को विचार करके दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। देहात्म कैसे होगा, विचार करते करते तो होगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत तरह के तरीके इसी के लिए हैं। योगी लोग चेष्टा करते हैं, निर्विशेषवादी लोग ब्रह्मज्ञानी लोग चेष्टा करते हैं, अष्टांग योगी लोग चेष्टा करते हैं, कुछ कुछ समर्थ होते हैं कुछ कुछ, किंतु काट नहीं पाते इसको। वो कैसे करते हैं, जैसे दूब की घास है, दूब की घास बढ़ गई, या बरगद का पेड़ है छोटा सा, वो कहीं दीवार में या कहीं वो
उगाया
तो उसके ऊपर को डाल को काट दिया और कुछ देर के बाद में जड़ और मोटी हो करके भीतर चली जाती है और फिर पनप जाती है, उसमें फिर बढ़ जाता है। इस तरह से करते करते घर को भी गिरा देता है मंदिर। ऐसे ही बांस, बांस का झाड़ होता है, बांस का पेड़ आपने देखा है कहाँ होता है? बांस की जड़ होती है मट्टी के अंदर में और गांठें होती हैं और गांठ से कपोले निकल, ऊपर से तुम सब बांस काट दो ना, ऊपर से सब बांस काट दो किंतु फिर नीचे से और कोमल कोमल एक काटेगा तो दस आएगा। तो कहते हैं कि योगी ज्ञानी और अष्टांग योगी लोग ऐसे ही काटते हैं ऊपर से, उसको यदि नदी में कोई पानी आ रहा है ना तो उसको बांधने की चेष्टा करते, आप जाने नहीं देंगे, किंतु वो तो और भयंकर रूप से उसको तोड़ फोड़ करके फिर चलाता है। वैष्णव लोग उसको बड़े आराम के साथ में सहज रूप में ही उसको एकदम धारा को बंद कर देते हैं, धारा का पानी नहीं चलता, सुखा देते हैं उसको। इसलिए कहते हैं कुन्वई स्पीकर, यही है तं तं प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंत आनंद मात्र उपपन्न समस्त शक्त भक्ति विधाय परमाम समय कई अविद्या ग्रंथिम विभेद ममाही इति। ये मैं और मैंने की ये जो आत्मबुद्धि है ये जाति नहीं है। अभी ये शरीर चला गया और ये शरीर जाने के बाद में मर गया तो दूसरा ले लिया, किंतु अभी जो कोटि कोटि जन्मों का संस्कार जो बीत गया है वो आगे से ही बना रखता है देह में आत्मबुद्धि, एक जन्म के लिए नहीं हजारों जन्मों के लिए बना रखता है। अभी 50 लाख भी जन्म हो जाए तो वो जाएगा नहीं, वो कम सहा आता उपभोक्ता हुआ चलता है, बड़ा भारी कठिन है। इसलिए हम लोग इतना भजन करने पर भी ये जा नहीं रहा मम, और इसी के लिए लड़ाई, इसी के लिए झगड़ा, इसी के लिए चोरी, इसी के लिए सब कुछ करते हैं। तो त्वं प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंते, मनु जी कह रहे हैं, कल बतलाया था, मनु जी कह रहे हैं किससे, ध्रुव जी। इसलिए उत्तम मारा गया और वो बिगड़ करके क्रोधित होकर के हमारे भाइयों को इन्होंने मार डाला और बस अपनी सेनाएं लेकर के आक्रमण करके और उनको मार दिया। जक्षों जब मरने लगे तो पता लग गया देवताओं और कुबेर के वो सब अनुचर हैं, जब कुबेर हैं भगवत भक्त, इसलिए मनु जी एकदम, मनु क्यों आए, उन्हीं के वंश में ये हैं, स्वयंभू मुनि के वंश में उन्हीं के दो पुत्र थे और उनके ये लड़के हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए बोले कि देखो शत्रु और मित्र ये काल्पनिक देहात्म बुद्धि से उत्पन्न होता है, कोई शत्रु और मित्र नहीं है, भगवान जो है वो काल शक्ति हैं, ये काल शक्ति है, ये काल शक्ति बड़ी भयानक है, इसको कोई रोक नहीं सकता, वही काल शक्ति के रूप में संहार करते हैं, वही अबर पालन पोषण की शक्ति के रूप में जगत का पालन पोषण करते हैं और जगत की सृष्टि भी वही करते हैं। तो वही यदि कोई व्यक्ति तुम देखो तुम अप्रत्यग आत्मनि भव, प्रत्यग आत्मनि माने क्या, जो सब समय अपने स्वरूप में भगवान रहते हैं उनके उन्मुख हो, उनको खोजने की चेष्टा करो और जब उनको तुम पालेगा ना तो अपने आप ये देहात्म अभिमान भी, क्योंकि अपने स्वरूप में रहते हैं, स्वरूप हमें अवस्थित, तो तुम भी स्वरूप में अवस्थित होने की चेष्टा करो, आप लोग भी अपने स्वरूप में स्थित होने की चेष्टा करो। यदि मान लिया कि तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ तो उसमें हिंदू और मुसलमान का भेद रहेगा कि नहीं, मस्जिद और मंदिर का प्रश्न रहेगा, कोई भी यहाँ पर भी कोई भी भेद नहीं रहेगा, कोई लड़ाई झंड स्वार्थ पार्थ कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं तुम यदि आत्म कल्याण चाहो, इनको जो शत्रु समझ करके मार रहे हो, अरे तुम तो भगवत भक्त हो, 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान की कठिन आराधना करके उनका दर्शन किया और फिर तुम ऐसे जघन्य काम में, कुत्सित काम में लगे हुए, पाप में लगे हुए, तुम किसको मार रहे हो? ये है कौन, कौन है? ये तो भगवान के सभी नित्य दास हैं, सब में भगवान अवस्थित है। मान ले कि अपना छोटा भाई कुछ कर दिया, तो जो बुद्धिमान है व्यक्ति, अरे भाई मेरी संपत्ति मान ले कि 10 इंची 15 इंची एक हाथ जो भी उसमें जा रही है, तो भी अपने हमारे ही पिताजी का तो लड़का है, अपना ही तो भाई है, कहाँ दूसरी जगह थोड़े जा रहा है। यदि स्थूल बुद्धि करें तो, और यदि परमात्मा दृष्टि करें तो फिर ये संसार में हमारा कोई अपना चीज नहीं है, न उसका है, वो भी छोड़ करके जाएगा, हम भी छोड़ करके जाएंगे 2 दिन के लिए इसको का। पृथ्वी देवी हंसती है कि आज हमको कह रहे हैं ये मैं भूपति हूँ, भूपति मैं पृथ्वी का पति हूँ, और 2 दिन के बाद में दांत बाहर करके हमारे हम मट्टी के अंदर में ही दब जाते हैं, वही बड़े बड़े भूपाल और बड़े बड़े मरने के बाद में क्या होता है,
मिट्टी में मिल जाते क्या,
मिट्टी में उनका शरीर मिल जाएगा हमारे में। तो इसलिए क्रोध किस लिए हुआ, अपना और पराया मन, अपने शरीर पर तो क्रोध क्यों नहीं करता, अपने शरीर पर तो क्रोध नहीं करता, तो अपना ही उनको मान करके चलो। स्वरूप अगत सभी भगवान के दास हैं, तुम भी भगवान का दास। भगवत भजन में ये चीज होना चाहिए, जिसको नहीं है ना तो उसका बहुत समय भगवत भजन में लगने पर भी कोई फल नहीं होता, और जिनका ये ज्ञान हो गया है ना स्वरूप का, ये मैं भगवत दास हूँ, भगवान ही जगत के सब कुछ मिला था, उन्हीं की काल शक्ति से सभी नाक में छेद कर बलिवर बैलों को, बलिशानों को, ऊँटों को, बैलों को बलिवर बता रहा था, गाड़ी में लगा देते हैं, ऐसे थोड़े चलेंगे वो बैल सब, और गाड़ी में लगा दिया वो इधर उधर भाग जाएंगे, इधर उधर करेंगे, उलट देंगे, इसलिए नाक में रस्सी लगा करके, और छोटा सा बच्चा भी उनको कंट्रोल करके निकलता है, एक बलिवर की भांति हम सब लोगों को ये अहम मम बुद्धि दे करके, शरीर में आत्म बुद्धि दे करके, वही काल ने, काल कौन, भगवत, क्यों हम थोड़ा सा भगवान को छोड़ करके सुख चाहते हैं, इसलिए दंड के स्वरूप में आता है। इसलिए कभी भी जो कोई आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित होता है ना, वो किसी पर क्रोध नहीं करता, किसी पर भी शत्रु मित्र ये सब भावना नहीं रखता, और वो स्वच्छंद गति से भजन करता हुआ चला जाता। इसलिए अहम मम बुद्धि रखते हुए भगवान का नाम करना ये अपराध, और हम लोग यही कर रहे हैं, तो अपराध होने में अपराध से कैसे बचें? यदि निरंतर हरि नाम करें और ये सोचने की बुद्धि भी समय न रहे जब मैं शरीर हूँ, तब फिर ये 24 घंटा हरि नाम करें, हरि कथा सुने और सेवा में लग रहे हैं, तो ये मौका नहीं मिलेगा ये इस शरीर के लिए कुछ प्रसाद जो भगवान का मिला वो खा लिया जीवन के लिए, और वैष्णव की गुरु की सेवा करने लग गए, बस इसी बस उसका अवसर नहीं मिलेगा, और नहीं तो दूसरों पर देहात्म बुद्धि करके, शत्रु मित्र करके वैष्णवों को फिर अपना शत्रु माने, और गुरु जी को भी अपना से दूर मान करके अवज्ञा करेगा, और वो भी उनको भी छोड़ देगा, और अंत में जो भगवान हैं इनका भी तो विरोधी हो जाएगा क्रमशः, वो भगवान तक ठेक जाएगा। इसलिए खूब सावधानी के साथ में देहात्म बुद्धि अभी से छोड़ने की चेष्टा कर, कैसे छूटेगा, भगवान नाम के द्वारा, भगवान की कथा के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय भक्ति के द्वारा ही छूट सकता है। तो तब प्रत्यग आत्मनि तदा भगवती अनंत, जो भगवान जो सब समय अपने आत्मा में स्वरूप में अवस्थित होते हैं, तुम उनके सन्मुख होकर के, उन्मुख, उन्मुख माने उनके प्रति भक्ति करके, और तुम इस मम और अहम इन दोनों को काट दो, इसी से ही कहेगा। क्यों? आनंद मात्र, वो आनंद मात्र है, सच्चिदानंद संग भगवान। आनंद मात्र माने ये मत समझो जैसे उसमें केवल आनंद, सच्चिदानंद। उपपन्न समस्त शक्त और उनमें समस्त प्रकार की शक्ति है, अघटन घटन पटियसी शक्ति संपन्न है। उनका स्मरण मात्र से, उन्मुख होने मात्र से वो ऐसी शक्ति देंगे हमारे अंदर में जो मम और अहम कब चला गया मैं और मेरा कोई पता ही नहीं चलेगा, अनायास हो जाएगा। अभी देखो, अभी जरा विचार से देखना है जो हम में अहम और मम कितना है। जब कोई काम करते हैं कुछ पाते हैं ना, मुझे थोड़ा सा कुछ मिल गया तो ये मेरा है, ये मेरा है, उसको रख देते अलग से। और जब शरीर के लिए कोई जरूरत होती है तो मठ से या माता पिता से कहते हैं पिताजी हमको ये चीज की जरूरत है, उनसे ले, क्योंकि एक परिवार है ना, और अपना कमाएंगे अपना वो रहेगा। किंतु जब जरूरत होगी तो पिता माता का कहेंगे इसमें हमारा भाग है, ये खर्च क्यों करें। वैसे गुरुजी और ये जो आश्रम है उससे हम सब कुछ लेंगे, और ये जो मिल गया हमको ये अपना है, उसको अलग रखते हैं और ऐसा रखते हैं जो कोई जाने नहीं। वैसे भगवान से भी हम ऐसा ही करते हैं, इसलिए अहम ममो सबको छोड़ करके गुरु पादाश्रय करो रहेगा पहले, किंतु भक्ति के द्वारा वो भगवान सर्वशक्तिमान हैं और सब समय वो अपने आत्मा स्वरूप में अवस्थित हैं। काल रूप में होने पर भी अपने स्वरूप में अवस्थित हैं, काल रूप में है ना। काल किसको कहते हैं? देखो विवाह हुआ तो कैसा खुशी हुआ, वही काल है ना। काल तो एक रस सब समय है किंतु ऐसे चलता है। अब उस समय कोई मित्र बना दिया और तलाक देने के समय में वही काल आया ना, अब वो कैसा बन गया?
दुश्मन।
मरने के समय में वो काल किया, शरीर से आत्मा को मन को अलग कर दिया। जन्म के समय में दोनों को एक साथ काल ऐसा है जो क्रोध नहीं है ना किंतु देहात्म बुद्धि है, इसलिए देहात्म बुद्धि के द्वारा वो क्रोध तुमको उत्पन्न करा दे, कोई कारण नहीं है तो। अच्छा उसी के लिए विपुल शोक करा देगा, विपुल शोक करा देगा। मान लिया कि हमारी आंख खराब हो गई, हजार चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा करके इसको बड़े अच्छे डॉक्टर से बहुत रुपया खर्चा किया और वो आंख दोनों फिर खत्म हो गई, ये कैसे क्या हो गया? काल से हुआ, हम समझ नहीं पाते हैं। उसने हमें मार दिया, हमारी आंख खत्म हो गई और आंख अपने आप खत्म हो गई। उस समय सोचते हैं कि इसने ऐसा हमको मारा जी मेरी आंख खत्म हो गई। अब तुम्हारी आंख अपने आप जो खत्म हो गई ऑपरेशन के समय में, तब वो क्या हुआ? इसलिए शत्रु मित्र की कल्पना न करके शांत चित्त से जो आना होगा दुख शोक ये सब न कर करके भगवान का भजन करो। जितने परिमाण में उसकी उपलब्धि होगी उतने ही परिमाण में अहंग मम जात चला जाएगा और शांत चित्त से एक दिन ऐसा होगा जो भगवान दर्शन हो जाएगा। अभी ये ध्रुव जी हैं, एक बार झलक दर्शन मिली थी और उसी ने प्रभु ने उनको दे दिया 36,000 वर्ष का राज्य दिया और इसके बाद में अंतर ध्यान हो गया। कुछ सुकृति तो जरूर थी और उनको सब प्रकार का वैभव भी मिल गया, यह बात तो ठीक है, भगवत दर्शन भी हो गए, किंतु अभी भक्तों का भी अधिक संग नहीं हुआ। उनके अंदर में कुछ बातें हैं, नारद जी का संग मिला अनर्थ अवस्था में ने? और वो बहुत चेष्टा किया तो अनर्थ उनका दूर नहीं किए, सोचा जैसे भोग के द्वारा होगा इसलिए अधिक चेष्टा नहीं। यदि चेष्टा करते इच्छा करते ना तो उस समय हो जाता, तो अहंग मम भोग करें, इसलिए अहंग मम दे दिया क्या, मैं राजा हूं पृथ्वी में सम्राट अगमक याद दे दिया 36,000 वर्ष के लिए, इतना बड़ा भाई विशाल
राज्य
दे दिया, पत्नी दे दिया, पुत्र दे दिया, ये सब अब लोग भोग करो। किंतु चूंकि भगवान का कुछ दर्शन हुआ था, नारद जी की भी कृपा हुई थी, किंतु अभी पूरे संभले नहीं थे, अहम मम बुद्धि उनकी खत्म नहीं हुई, क्योंकि 36,000 वर्ष भोग करना है। जब 36,000 वर्ष भोग करने का समय जब बीतने लगा तो ये युद्ध में इस प्रकार से संहार कर लेने, तो वो आ गए मनु, उनके बाबा, वही बाबा ही पर दादा
बाबा
पितामह कहो, पितामह जी आ। अच्छा, अब वो तो परम वैष्णव है मनु, अब इनको समझा रहे हैं, इनका कोई शत्रु मित्र नहीं है मनु का, क्यों ऊपर की स्टेज में, तो कह रहे हैं कि देखो भगवान अपने स्वरूप में, तुम भी उसी भगवान की तरफ उन्मुख हो और धीरे धीरे इसको काटते जाओ। भक्ति विधाय परमं, वो जो भगवान हैं जो सब समय स्वरूप में अवस्थित हैं और सच्चिदानंद में हैं, उनके चरणों में भक्ति करो और सनक मैंने धीरे 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 अविद्या ग्रंथिम विभेद, अविद्या की जो ग्रंथि, अविद्या मैंने विद्या, विद्या मैंने जो यथार्थ चीज है उसको जानना, अविद्या मैंने उसको
कृष्ण
बहिर्मुख, अविद्या मैंने एकदम आत्मा का ज्ञान नहीं होना, ये सबसे बड़ी अविद्या, भगवान को अपने को नहीं जानना। बल्कि हम लोग जितने अभी हैं सब अविद्या में, मैं और मेरा इसमें पति न के लिए, अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं इसी के वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये सब धीरे धीरे दूर होगा तब विषय छाड़िया कबे शुद्ध हो मन कबे आगे के रब, इसलिए यही सब बाधाएं हैं। इसके लिए खूब विचार से देखो और विचार करो, जहां तक हो सके इसे दूर रहने की चेष्टा, मैं और मेरा के शुद्ध स्वरूप को समझो। मैं भगवान का नित्य दास, सेवा में हमारा अधिकार है, प्रभु हमारे हैं, ये मैं और मेरे, ये विश्व ब्रह्मांड का सब कुछ प्रभु के नाते हमारा ही है, ये सब हमारे हैं, किससे विरोध करें, हमारे पिताजी का लड़का हमारा क्या लगेगा, तिलक में बोलो तो तुम हमारे पिताजी का लड़का हमारा भाई है, सब हमारे पिता हैं कृष्ण और सब उनके पुत्र हैं, तो सब हम लोग भाई हैं,
सब लोग सबके भाई,
सब
सब
सब भाई, इसलिए भक्ति विधाय, भक्ति मैंने क्या, निर्गुणा भक्ति करो, सगुना नहीं, कर्म और ज्ञान मिश्रित भक्ति से नहीं होगा, उसके लिए अगले श्लोक में बतलाएंगे। भक्ति मैंने अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अभिजनावृतम अनुकुलेन कृष्ण अनुसनम, ऐसी भक्ति करो, आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब अन्नाभिलाष रहेगा ही नहीं। अन्नाभिलाष किसको कहते हैं, स्वरूप के बाद में इतर जो स्वरूप हमारा मिला हुआ है, इतर स्वरूप, इतर स्वरूप माने ये सब, अभी हमारा ये सब है संसारिक चीजें, ये सब इतर स्वरूप है, अभी इसी में मैं और मेरा फंसा हुआ है, इसलिए धीरे धीरे अविद्या की ग्रंथि, अविद्या की ग्रंथि माने जीव चेतन है, अब चेतन और जड़ की ग्रंथि लग गई, कभी लगती नहीं है किंतु भगवान की इच्छा से चेतन और जड़ की ग्रंथि होगी, चेतन और चेतन की ग्रंथि होती है, जड़ और चेतन से ग्रंथि नहीं बनती किंतु लग गया। जड़ और चेतन का ग्रंथि कैसे, वही मम और अहम के द्वारा बांध दिया ग्रंथि, और जितने खोलने की चेष्टा करते हैं उतने ही और अधिक कड़ी हो जाती है और खुलती नहीं, बल्कि और गांठ बड़ी कड़ी हो जाती है, भूलती नहीं है। तो ये विभेदशी भक्ति के द्वारा विभेदशी माने भेद करते हैं, भेद माने अलग ग्रंथि को अलग करते हैं। मम अहम इति प्ररूढ़म, तो खूब जोर से गांठ प्ररूढ़ माने खूब जोर से, ये सहज रूप में ही भक्ति के द्वारा वो गांठ खुल जाती है। इसके बाद में और भी सब बतलाया, बतलाने के बाद में उनको ज्ञान हुआ और उनको प्रणाम किए, बड़े लज्जित हुए। और लज्जित होने के बाद में कुबेर के यहाँ, उनके कहने से कुबेर के यहाँ गए, क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके हमने बहुत अन्याय किया है, अपने वहाँ लौट आए। फिर शांति के साथ में भगवत भजन करने लगे। आप लोग भी हम लोग भी ये अहम और मम, ये जहां तक हो मैं और मेरा, शुद्ध स्वरूप में आने की चेष्टा करें। और ये जो अभी ऊपर वाला जो मैं और मेरा है, ये शरीर मैं हूं और शरीर से संबंधी वस्तु हमारे हैं, ये मेरी लड़की है, ये मेरा लड़का है, ये मेरा धन है, ये मैं हूं, ये सब भेदभाव छोड़ कर, और संसारिक वस्तुओं से हमारा कोई भी लाभ से कोई लाभ नहीं, कोई भी चीज संसारिक उसको हम रखेंगे। यदि सांप हमने पाल पोस करके गांठ में बांध करके अपने पास में रख लिया सिरहाने, तो वो क्या करेगा सांप, वो तो काटेगा। यदि सांप को लेकर के और गले में हार लगा लिया अपना समझ करके, तो क्या करेगा, तो काटेगा ही। तो हम अपने को समझ रहे हैं कि बड़े बुद्धिमान हैं, क्या विषयों को संग्रह करके अपने सिरहाने के रखते हैं, किसी से छिपा करके, दूसरा कोई जानता तो वो हो सकता था जी वहां से हटा, किंतु हम छिपा करके रखते हैं इन विषयों को, यहाँ तक कि गुरु जी से भी छिपा करके रखते हैं। बस क्या होता है, वो काटता है, काटने से हम मर जाते हैं। जत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुदक रथयन्ति संत तद्वर्णमित्तमतयो जतयो विरुद्ध श्रोतो गणा समरणं भज वासुदेव। जत पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, इसी में अब पृथु महाराज जी का चलिए, पृथु महाराज जी भगवान की आराधना किए तो भगवान ने अनुग्रह करके सनत कुमार को अपने भक्तों को दे दिया। भगवान जिस पर कृपा करते हैं तो क्या करते हैं,
संत के साथ
संतों का संग देते हैं, सत्संग के लिए देते हैं। भगवान खुद आएंगे तो वो काम नहीं कर सकेंगे जो सब संतों के द्वारा होता है, वो काम वही करते। मान लिया कि राष्ट्रपति हमारे घर में आ जाए और किसी मुख्यमंत्री से कह दें, हुक्म दे दें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वहीं से आ दें, देखो उसका ये हो रहा है, उसको सब ठीक ठाक कर दो, कौन सुविधाजनक है। राष्ट्रपति आने से और गड़बड़ हो जाएगा, कितना खर्च और कितना सब चौपट हो। इसलिए वो अपने किसी अधिकारी व्यक्ति से बड़े बड़े मामलों में आए, छोटे छोटे। तो भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अपने नहीं आकर के, क्योंकि भगवान को न पहचानेगा, न भगवान से कभी परिचय है, न देखा है, न सुना है, न जानता है, इसलिए अपने भक्तों को उठे। चतुसन उनके भक्त हैं, इसलिए उनको कैसे भक्त हैं, उनकी ग्रंथि खुल गई है। वो ग्रंथि कैसे खुली, ब्रह्मा जी की कृपा से। ब्रह्मा जी ने क्या कृपा किया उनकी, वो निर्विशेष तत्व के उपासक थे, निर्विशेष। तो ब्रह्मा जी को कुछ ग्लानि जी हमारा बेटा और अंत में ऐसा हो हमसे संबंध होकर के भी जो निर्विशेष ब्रह्म में उसकी स्थिति है, तो उन्होंने भगवान के चरणों की तुलसी का मकरंदर उनके नाक में पहुंचा दिया। इतना सुंदर घ्राण बाजी कहां से आ रहा, बस वहां पर पहुंच करके भगवान ने उन पर कृपा कैसे की, वो जय विजय को अभी संपाद दिया। और फिर भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी, और फिर वो प्रणत हुए, और फिर उनको तत्व ज्ञान लाभ हुआ भगवत भक्ति के द्वारा, फिर लौट करके आए। तब से ये भगवत भक्त है। तो वही ये चतुष्सन ये लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं, तो विचरण करते 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 पृथ्वी महाराज जी के पास में पहुंचे। कि किस लिए, भगवान की इच्छा से वहां पर पहुंचे, इस पर कृपा करना है, इसको तत्व ज्ञान देना है। और ये अभी मैं और मैंपन में मेरे में डूब रहा है, कुछ है, ज्ञानी पात्र है इस ज्ञान का, हम लोग अभी पात्र हैं कि नहीं है संदेह है, इतने विषय में डूबे, वो भगवान के कृपा कुछ पात्र हैं, इसलिए वो अभी कुछ पात्र हैं। इस सभी लोग ज्ञान के पात्र नहीं हो सकते हैं, तत्व ज्ञान के और भक्ति के पात्र नहीं होंगे, जो होंगे उसी को गुरु वैष्णव लोग आकर्षण करते हैं, सबको नहीं करते, और आकर्षण करने से सब आएंगे नहीं। कितने परिश्रम के बाद में, कहां कहां कैसे करने से इतने लोग त्यागी, और सर्वत्र घूम घाम करके घर घर आदमी भेज करके इतनी हरि कथा सुना करके भी अभी कितने लोगों को हम लोगों ने संग किया, शुद्ध भक्ति गृहस्थ भक्तों में भी। तो ये क्या कह रहा था, तो वो सनत सनंद कुमार ये पात्र थे, और उन्होंने देखा कि ये पात्र है राजा, राजा है तो किंतु पात्र है। पृथ्वी महाराज कैसे उत्पन्न हुए, इनका जन्म कैसे हुआ, साधुओं ने इनका जन्म दिया, संतों ने ही जन्म दिया, कैसे दिया, उसके पिता
बेन
पिता नहीं, बेन बड़ा भारी
दुष्ट
भगवत विद्वेषी व्यक्ति था, भक्त नहीं भागवत, इसलिए ऋषियों ने उसको हुंकार करके मार डाला और शरीर को मत दिया है? तो उससे काल पुरुष काला निकला, वही पाप निकाल दिया, अबरा ज्ञान निर्दोष, उसके इस भाग को मथा वेद की अरणी से, और अरणी अरणी माने आग, और वेद के मंत्र रूपी
मंथन
से उसको मथा, मत करके उसमें से पृथ्वी महाराज उत्पन्न। अब इनका चित्त तो शुद्ध था, किंतु भक्ति की अभी कुछ ही थोड़ी सी कमी है, पृथ्वी को सत्व गुण से युक्त थे, सब पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी, उसको बराबर किया, पृथ्वी का दोहन किया, सागर का भी दोहन किया, और प्रजाओं के कल्याण के लिए सब काम किए, अभी भक्ति की कुछ कमी थी। अब ये सनातन सनक सनंदन सनक सनक कुमार को भेजा भगवान, ये पात्र है, क्यों, इसमें सत्व गुण है, तामसिक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं आएगा, उसका पात्र नहीं, तामसिक है ना, खाने पीने विषय भोगों में मारामारी में झगड़ा में लगा हुआ। अब दुर्योधन तत्व ज्ञान सुनेगा, कर्ण सुनेगा कि जरासंध सुनेगा, किंतु भीष्म पितामह तत्व ज्ञान सुनेंगे सुनाएंगे, और इनसे भी भक्ति की बात कौन सुनेगा, और भी सुनेगा, हो सकता है भीष्म पितामह का वो पात्र कौन हो, राजसी किन में सात्विक से भी ऊपर, वो ज्ञानी ज्ञानी भक्त के रूप में, वो ज्ञान मिश्रा थोड़ा सा हो गया, इसीलिए विशुद्ध प्रेममय भक्ति नहीं है, प्रेममय भक्ति पांडवों में। तो वो भीष्म पितामह क्या पात्रत्व कैसे आए, तो उनको भेजा, भेज करके सनत सनंदन सनत कुमार आए और आकर के तब इनसे बातें कर रहे हैं, तब फिर भगवान इनको दर्शन देंगे पीछे, तब पीछे से भगवान ने दर्शन दिया। हम लोग भी अभी कुछ तम मिश्रित हैं, यहाँ तक कि तम और रज, रजगुण और तमोगुणी हम लोग सब हैं। यही शुद्ध होते 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 फिर हो जाएगा तम हट जाएगा, रज और कुछ सत्व मिल जाएगा, ये सहज ही नहीं जाएगा। कर्मों का भोग करते 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 यदि संत लोग मिल गए, इसी में तम में होता है क्रोध द्वेष हिंसा ईर्ष्या, ये सब क्यों देहात्म बुद्धि प्रबल है और संतों का संग इनका नहीं होगा, भी बहुत मुश्किल है, इनको उनके कैटेगरी से थोड़ा सा ऊपर वाला कोई साधु मिलेगा, उनकी बात समझेंगे, एक बाय एक कोई भक्त इनके पास में पहुंच जाएगा, वो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए भगवान अनुग्रह करते हैं जो महातामसिक है उसके बाद उसके ऊपर में कृपा करने के लिए रज और सत्व मिले हुए किसी संत को भेज देते हैं। शुद्ध जो सात्विक हैं उनके लिए निर्गुण भक्तों को भेज कृपा कर। यहाँ पर नारद ऋषि क्यों नहीं आए? अभी सनत सनत कुमार आए हैं, इनको भेजा क्यों? अभी निर्गुण के और ये सप्तम ये सब मिले हुए गुणों से अभी तड़ा निकटतम के हैं, वो रहते हैं कहाँ?
महर्षि लोग
सप्त लोग के पास, तपोलोक, तप या सप्त में
तपोलोक,
सप्त लोग में रहते ब्रह्मा जी के पास, अभी भी गुणों के अंतर्गत हैं। जैसे ब्रह्मा जी अभी रजोगुण में हैं, उनमें भगवान का रजोगुण